Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market news. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. But do remember to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar. Hazir hain Market Mantra ke ek aur taaza ank ke saath. Is karyakram mein hum desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lete hain, baat karte hain share markets ke bare mein. Aaj din shanivar ka hai aur shrotaon aapko maloom hai shanivar ka din aapke liye hota hai. Aap chahein to arth jagat se sambandhit, शेयर मार्केट से संबंधित, देश की इकोनॉमी से संबंधित कोई भी सवाल हमसे इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं. तीन टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं. नंबर्स हैं 2331-44-44, 2342-1050 और 2310-464. तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें, अपने सवाल पूछें. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मार्केट एक्सपर्ट राजीव रंजन मौजूद. राजीव, बहुत बहुत स्वागत आपका.
नमस्कार.
शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा. सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में.
द हेडलाइंस: डोमेस्टिक शेयर मार्केट्स विटनेस डिक्लाइंस दिस वीक. बीएसई सेंसेक्स एंड एनएसई बोथ शेड मोर देन 1%. Decline witnessed in US markets as well. S&P 500, Nasdaq both down by more than 1%, and Prime Minister Narendra Modi to embark on a 5-day tour to Cyprus, Canada and Croatia tomorrow.
घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह गिरावट रही. बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों 1% से ज्यादा गिरे. अमेरिकी शेयर बाजारों में भी गिरावट. S&P 500, नैस्डैक भी 1% से अधिक गिरे. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर होंगे रवाना. व्यापार सहित द्विपक्षीय संबंधों के कई मुद्दों पर होगी चर्चा.
We begin with the Sensex pack. Indian equity market continued its losing streak for the second straight week, with the benchmark indices BSE Sensex and NSE Nifty falling over 1% each as escalated geopolitical tensions, sustained foreign fund outflows and lack of clarity on US-China trade negotiations weighed on sentiments. The large and mid-cap indices were the worst hit, while the small-cap index showed some resilience and closed flat during the week ended June 13. The 30-share Sensex lost 1,070.39 points or 1.3% to settle at 81,118.60, while the Nifty 50 declined 284.45 points or 1.13% to close at 24,718.60.
योगेश आज के हमारे पहले कॉलर होंगे दिल्ली से. योगेश, बहुत बहुत स्वागत आपका. क्या सवाल है?
जी नमस्ते आप सभी को. मेरे दो सवाल हैं. पहला सवाल मेरा ये है कि ईपीएफ को लेकर ही मेरा पहला सवाल है. और ईपीएफ क्या आज के जमाने में इतने एडवांसमेंट होने के बाद में भी ईपीएफ को एक अपर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए मैंडेटरी माना जाना चाहिए? क्योंकि मैस बन चुका है ना, तो हमें ईपीएफ का पैसा कहाँ जा रहा है उसके बारे में कोई जानकारी होती है, और बहुत बार उसको मर्ज करना अकाउंट को आपस में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो इंटरेस्ट पा ही नहीं पाते उस पर. तो क्या एनपीएस अपने आप में सक्षम नहीं है और कैसे इससे निजात पाई जाए? दूसरा सवाल हमारा ये है कि भारत अभी 145वें पर कैपिटल जीडीपी के मामले में 145-140 रैंक के आसपास में है, तो तो ये कैसे विश्व गुरु की पोजीशन पे पहुंचेगा, कैसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होना ही काफी है।
जी योगेश
जी, जी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये ईपीएफ के बारे में समझना चाहते हैं या एनपीएस के बारे में?
ये एनपीएस वर्सेस ईपीएफ दोनों के बारे में समझना चाह रहे हैं, तो एनपीएस से शुरू करते हैं। जो पेंशन स्कीम है
जी,
वो एक बेहद बहुत ही लोकप्रिय और आम लोगों के लिए, या कहें सरकारी लोगों के लिए भी, जो सैलरीड क्लास है।
लेकिन भविष्य निधि और पेंशन, मतलब ठीक है,
ये दोनों दो चीज
चीजें हैं, दोनों रिटायरमेंट के बाद काम आने के लिए चीजें हैं, लेकिन बिल्कुल रिप्लेसमेंट नहीं है एक दूसरे का
जी।
और ईपीएफ किसी भी कर्मचारी के लिए एक आवश्यक है, और उसमें आप इतनी अनिश्चितता क्यों है उन्हें मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक मैंने कभी ये नहीं समझा कि किसी कर्मचारी के लिए उसका भविष्य निधि का पैसा कहाँ जा रहा है, इसको लेकर चिंता होनी चाहिए कोई, ये कोई चिंता का विषय
बिल्कुल
तो
नहीं। दरअसल वो समझना चाह रहे हैं कि एनपीएस क्या है और इसमें कैसे जुड़ सकते हैं।
बिल्कुल, एनपीएस एक अलग व्यवस्था है, अगर आप उसमें व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ सकते हैं, अगर आप मतलब किसी कंपनी के कर्मचारी हैं, आप अपने स्तर पे वहाँ पे जुड़ें, और जो भी लोग एनपीएस से जुड़े हैं अभी तक उनका अनुभव अच्छा रहा है
जी।
तो
और लगभग हर बैंक और पोस्ट ऑफिस एनपीएस की सुविधा आपको प्रदान करती है, वहाँ उनके पॉइंट्स हैं,
और उसमें आपको चुनने के लिए अलग अलग तरह के विकल्प मिल जाते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम्स हैं उसमें आप जा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर उसमें अपना चुन सकते हैं,
थोड़ा
मिक्सचर बना सकते हैं, तो इनमें कोई ज्यादा भ्रम होना नहीं चाहिए।
राजीव, ये भी डिपेंड करता है कि किस उम्र में आप एनपीएस से जुड़ रहे
हैं, रिस्क प्रोफाइल उसी से।
अगर आप बहुत कम उम्र में जुड़ रहे हैं, आपकी उम्र अगर 25 साल 30 साल के आसपास का है, तो आप अपना इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर पेंशन की जरूरत होती है 60 वर्ष के बाद। तो आपके पास अगर 25-30 साल में जुड़ रहे हैं तो 30-35 साल का लंबा समय है, तो ऐसे में इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा रखिए। आप किसी भी बैंक से संपर्क करें, एनपीएस की सुविधा उपलब्ध है। और दूसरा जो पर कैपिटल जीडीपी की बात है, तो
ये हाल में इस संदर्भ में चर्चा में आया कि जब आईएमएफ की तरफ से आंकड़े सामने आए जिसमें भारत को जीडीपी के मामले में चौथे स्थान पर रखा गया, जापान से आगे निकलते हुए दिखाया गया, वहां पर काफी लोगों ने तुलना शुरू की। लेकिन देखिए, जो पहले से विकसित राष्ट्र हैं जिनकी आबादी बहुत कम है और उनकी कुल मिलाकर के जो नेशनल इनकम है वो पहले से काफी ऊंची रही है, वहां पर ऑब्वियस है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो उनकी ऊंची रहेगी। अगर आप चीन को देखें तो उसकी भी पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है, लेकिन आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था और बड़ी आबादी वाला देश है। तो पर कैपिटा इनकम को जब आप चीन से तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, वो जापान या जर्मनी या अमेरिका से आप तुलना करें वैसा फासला आपको नहीं मिलेगा। और आज की तारीख में $3,000 की प्रति व्यक्ति आय हमारी लगभग है
जो कि कम नहीं है। और यहाँ ये भी बताना ठीक रहेगा राजीव कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, लेकिन पर कैपिटा में वो भी नंबर वन नहीं है
जी,
उसकी भी पोजीशन नीचे है। तो आप चिंता बिल्कुल नहीं करें योगेश, हम सबके सहयोग से भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में ही अग्रसर है, और साल 2047 तक हम पूर्ण रूप से विकसित होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
नेक्स्ट कॉलर इज सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष वेलकम। सुभाष आप तक आवाज आ रही है हमारी?
लग रहा है ये कट गए हैं।
हाँ, तो हम अगले कॉलर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम पुणे। रत्नाकर
जी, रत्नाकर जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? तो आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं।
हेलो, गुड इवनिंग सर।
जी गुड इवनिंग।
मेरा सवाल है कि आरबीआई का रेपो रेट का डिसीजन के बाद मार्केट चढ़ा था, बाद में उससे भी वो नीचे आ गया।
जी जी।
तो उसका रीजन क्या है, और जो अभी ईरान इजराइल वॉर चालू है उसका भारत पर कितना शेयर मार्केट पर ये हो सकता है, परिणाम हो सकता है, और कौन से
जी आपकी आवाज कट रही है इनका जी,
लेकिन मूल रूप से जो उनका प्रश्न है कि
रेपो रेट
के बाद भारतीय बाजार में तेजी आनी शुरू हुई लेकिन फिर वो रुक गई
वापस।
इन्होंने खुद ही कारण का जिक्र कर दिया, और आपने भी अपनी शुरुआती खबर में जिक्र किया था कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी हैं, इसराइल और ईरान के बीच एकदम से तेजी से युद्ध भड़का है, तो इसका असर स्वाभाविक रूप से जियोपॉलिटिकल टेंशन कभी भी बाजार को अच्छा नहीं लगता है। तो वो असर है, विदेशी बाजारों में भी है, भारतीय बाजार में भी है। साथ में कच्चा तेल जिस तरह से एकदम से 7% उछला है, अगर इंट्राडे देखें और भी ज़्यादा उछल गया था, लेकिन फिर फाइनली एक दिन के अंदर 7% उछल जाना बड़ी बात है, तो उसका भी असर हमारे ऊपर होगा। हालांकि अभी भी क्रूड को लेकर के कोई बहुत एकदम चिंता वाले लेवल्स नहीं है। अगर आप रुपए को देखें, रुपए में भी उसी तरह का एक इम्पैक्ट आया, लेकिन वो कोई अलार्मिंग इम्पैक्ट अभी भी नहीं है। तो एक इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का रहेगा, लेकिन आगे ये चीज़ें कितनी एस्केलेट होती हैं उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। बहुत संभव है कि शायद अगर चीज़ें एक हद से आगे नहीं बढ़ती हैं तो भारतीय बाजार इसको पीछे छोड़ के
उतना असर नहीं पड़ा, वरना जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसके बाद एफआईआईज ने बहुत बड़े पैमाने पर इस सप्ताह सेलिंग कर दी, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा गिरा 1% के आसपास, लेकिन जैसा राजीव बता रहे हैं वो अभी भी संभला हुआ है और उम्मीद कर सकते हैं कि वो संभल जाएगा। सुभाष फरीदाबाद से जी, प्लीज सवाल पूछ लें।
नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, मैं ये जानना चाहता था कि ये जो हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है सर इक्विटी फंड में, म्यूचुअल फंड में, तो वो उसको विड्रॉ करना जरूर ठीक रहेगा या फिर लोन लेना ठीक रहेगा? एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सर पैसा देना है, वो मैं बात किया तो बैंक मैनेजर बोलता है कि नहीं लोन ले लो आप, होम लोन ले लीजिए, जबकि हमारे पास अपना पैसा इक्विटी फंड में है सर वो 4-5 साल से, तो विड्रॉ करना कौन सा मतलब ऑप्शन ठीक रहेगा?
नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या उसमें प्लस में हैं या माइनस में हैं, आपको कितना उसमें फायदा हो रहा है।
नहीं, लेकिन मेरा मूल मंत्र ये रहता है हमेशा कि कर्ज लेने से बेहतर है कि अपने हाथ में जो पैसा है
जी
उसका इस्तेमाल करें आप, कोई भी अगर आपको खर्च है तो, ये एक बेसिक प्रमाइस है। लेकिन इसके आगे कई बार इंडिविजुअल सिचुएशंस को देखते हुए अलग चीजें सोची जा सकती हैं।
अगर टैक्स बचाना हो,
कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन क्या था, आप हो सकता है आप किसी और फाइनेंशियल गोल को लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हों और बीच में आपका ये खर्च आ गया हो, उसको कैसे आपको समेटना है, तो इंडिविजुअल लेवल पे वो डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन एक मूल सूत्र ये है कि हाँ, कर्ज लेना वो उतना बेहतर विकल्प नहीं है, हाथ में पैसा है तो पहले उसका इस्तेमाल होना चाहिए।
राइट, नेक्स्ट कॉलर इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलुरु। मिस्टर प्रसाद, वेलकम टू द शो।
हाय, गुड इवनिंग मार्केट मात्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर।
गुड इवनिंग सर।
मिस्टर राजीव, जस्ट वन क्वेश्चन ऑन दिस अगेन ऑन द रेपो रेट। सी, आई जस्ट वांट टू नो हाउ लॉन्ग दिस 5.5 विल बी वैलिड, देन एट लीस्ट विल इट बी फॉर द नेक्स्ट 1 year? Because my question, actual question is, some banks are reduce the rates on the FD, correspondingly the 0.5%. But some bank advertise meaning, but they are not PSUs. They are saying that in spite of repo rate coming 0.55, we are still holding on to the 8.59 or something like that. Is it worth investing in those banks? This is my question, sir. Thank you.
Mr. Prasad, as far as the 5.5% repo rate is concerned, it is valid as long as RBI doesn't change it. And whether it will happen in the next MPC meeting or next to next, we don't know. बैंकों की तरफ से जो रिएक्शन होता है, देखिए आरबीआई का जो रेपो रेट का डिसीजन होता है वो बैंकों के लिए एक इंडिकेशन होता है कि आप अपने रेट्स को किस तरफ ले जाना चाहते हैं या किस तरफ ले जाएं, लेकिन वो कोई मैंडेट नहीं होता है कि आपको अगर रेपो रेट घट गया तो बैंकों को कंपलसरीली अपने रेट घटाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ मतलब कंपल्सन उनके सामने नहीं है। बैंक्स आमतौर पर ऐसा करते हैं कि जब रेट साइकिल नीचे की ओर जा रहा होता है तो वो आप जो पैसा जमा करते हैं उस पर तो इंटरेस्ट पहले घटना शुरू हो जाता है, लेकिन आप जो उनसे कर्ज लेते हैं उस पर इंटरेस्ट उतनी जल्दी घटना शुरू नहीं होता है, ये होता है कई बार, लेकिन आगे पीछे हो, लेकिन अंततः अगर आरबीआई के रेट कम होते हैं तो फिर बैंकों को भी अभी नहीं तो कुछ महीने बाद रेट अपने कम करने ही पड़ते हैं।
His other query was, Rajiv was, there are some private banks who are still holding on to the older rates, which is on the higher side as compared to the PSU banks.
So his question, मैंने उसी पॉइंट पर कहा कि बैंक जो हैं वो कई बार मतलब रेट साइकिल के हिसाब से आरबीआई की जो रेट ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो उससे थोड़ा सा लैग इफेक्ट के साथ चलते हैं, और उसमें वो कोशिश करते हैं कि जब रेट घट रहा हो तो जो ब्याज उन्हें देना है वो तो जल्दी घट जाए, लेकिन जो ब्याज मतलब कस्टमर को उनसे मिलना है वो देरी से घटे.
His pointed query was whether it's safe to stay put, stay invested in those private banks which are offering higher rates of interest as compared to the PSU banks, I guess.
See, अगर डिपॉजिट पे कोई प्राइवेट बैंक हायर रेट दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी हल्की है, थोड़ा सा नाजुक है.
राइट. एंड मूविंग ऑन टू सम अदर स्टोरीज, ऑन टू द यूएस स्टॉक्स, द S&P 500 डिक्लाइंड 1.13% टू एंड द सेशन एट 5,976.97 points. The Nasdaq declined 1.30% to 19,406.83 points, while the Dow Jones Industrial Average declined 1.79% to 42,197.79 points. Oil prices surged nearly 7% on fears the conflict could disrupt crude supply from the Middle East. U.S. energy stocks rose in tandem with Exxon opens new tab up 2.2% and Diamondback Energy opens new tab rallying 3.7%. Wall Street ended lower on Friday after Iran launched missiles at Israel in response to intensive Israeli strikes. Of course, we see, Rajiv, we've seen the U.S. markets also decline over the past week. Of course, one reason is the U.S.-Iran conflict and the Middle East conflict in which U.S., of course, is heavily embroiled over there. But now we see that the strikes that Iran is kind of pointing towards Israel now. We heard over the past couple of days that Israel has been heavily hit by the drones and missiles from Iran. Now, the second part of the story in which we talk about the oil price surge, which is nearly 7%. Now, where do you see this oil price actually going on from here if we look at the current scenario in the Middle East?
जी, देखिए, अगर ये लगता है कि ईरान और इसराइल की लड़ाई ज्यादा लंबी खींचने वाली है और उसके चलते जो ऑयल सप्लाई है वहां पर कोई डिसरप्शन आता है तब ऑयल प्राइसेस ज्यादा स्पाइक करेंगे. अगर सिर्फ लड़ाई होती है लेकिन ऑयल रूट्स खुले रहते हैं, मतलब टैंकर्स के आने जाने पर कोई उस तरह का डिसरप्शन नहीं होता है, ऑयल सप्लाईज बनी रहती हैं, तो एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं करेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेज. एक ये चीज़ हो सकती है. दूसरे, अगर ईरान के ऊपर जिस तरह का प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका की ओर से, अगर वो जल्दी से बातचीत की टेबल पर आ जाता है तो फिर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी कम हो सकता है एकदम से. लेकिन काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि ये मतलब लड़ाई कितनी लंबी खींचती है और कितनी इंटेंसिटी के साथ रहती है.
Yeah, you can call us on our telephone numbers, our listeners. You can call us on our telephone numbers 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. Since we are based in New Delhi, you have to prefix 011 before these numbers when you call up these numbers. And in the meanwhile, we are joined in by our next caller, Saket from Kanpur. Saket, welcome to the show.
नमस्कार सर.
नमस्कार.
हेलो मार्केट मंत्र, मैं मेरा सवाल ये था कि पीपीएफ जो 15 साल का अगर किसी का पूरा हो गया है तो उसको क्लोज करने के बाद नया पीपीएफ खोल सकते हैं या उसको 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर दें, उसमें ज्यादा फायदा है. और दूसरा प्रश्न है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस की क्या स्थिति रहेगी?
जी, देखिए, पीपीएफ को आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, वो एक स्वाभाविक विकल्प है. अगर आपका 15 साल का समय पूरा हो गया है तो ये विकल्प तो आपके पास रहेगा ही, और वो आसान विकल्प है, तो उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं. सोने और चांदी की जो लंबे समय की कीमतें हैं, इस समय बिल्कुल दोनों में काफ़ी उछाल है. लेकिन क्या अगर आप 10 साल 20 साल 30 साल जैसे टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हमेशा इस तरह के लेवल्स रहेंगे? ऐसा नहीं होता है. सोने और चांदी में इतिहास आपको बताता है कि अचानक कई बार इनमें बड़ी तेज़ी आती है और उसके बाद सालों साल तक ये बहुत ही एवरेज रिटर्न देते हैं. तो अगर आप कई दशकों का इतिहास देखेंगे तो अंततः आपको इन्फ्लेशन से थोड़ा सा आगे पीछे का रिटर्न मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा.
अगले कॉलर होंगे तापस, कोलकाता से जुड़े हुए हैं. तापस, स्वागत आपका मार्केट मंत्रा में, सवाल पूछ लें.
गुड इवनिंग सर.
गुड इवनिंग
राजीव जी.
नमस्कार.
गुड इवनिंग ऑल. राजीव जी, मेरे को, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो मेरा एक सवाल मेरा मन में आता है. जो FD मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक और बैंक में जो किया मैंने, वो 5 ईयर्स और 6 ईयर्स 3 ईयर्स लाइक दैट, तो मेरे को एक बात बताइए, जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे को मिल रहा है, ये क्या चेंज होगा क्या? माने ये रिपो रेट 1% घटने के बाद ये चेंज हो सकता है?
तापस जी, जो एफडी आप पहले करा चुके हैं उस पर ब्याज दरें नहीं बदलेंगी। जब आप नई एफडी कराएंगे या पुरानी एफडी को रिन्यू कराएंगे तब वो नई दरें आपके आपके लिए लागू होंगी।
That's why it's always wise, advisable, Mr. Tapas, that if the interest rates are running high, let's say 7.5 to 8%, especially for senior citizens,
and when the rate cycle is expected to go down, yes, that time, and even, the longer time frame is advisable.
Even otherwise, Rajiv, if the rate percent is close to 8%, which is quite reasonable on the higher side, it's always advisable to stay put, invested for a longer duration.
Nowadays we can say 5 years or 10 years. Nowadays we can say that the rate cycles will move between 5 to 8%.
बिल्कुल। Well, our next caller is Jitendra from Jaipur. Jitendra.
Hello.
Hello, Jitendra ji.
हाँ जी, हाँ सर, ये बताइए, जैसे निफ्टी 50 के जो शेयर होते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 50 होता है, तो ये लोग कितने दिन में उसका कैलकुलेशन होता है कि जैसे निफ्टी 100 वाला निफ्टी 50 में चला गया या निफ्टी 50 वाला बाहर हो गया, कितने दिन में गणना होता है ऐसे?
जी देखिए, एक तो ये इंडेक्स लेवल पे चेंजेज होते हैं और फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो अपने लेवल पे उसकी उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, कितने समय पे वो चेंज करेंगे, वो अपनी अपनी स्कीम की अलग हो सकती है। जैसे कुछ फंड्स होते हैं वो 6 महीने पे अपनी इंडेक्स के बेसिस पे रिव्यू करते हैं और चेंजेस करते हैं। बाकी एक्सचेंजेज समय समय पर अपने रिव्यू करते रहते हैं और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम होता है, प्राइस वॉल्यूम होता है, उसके हिसाब से वो अपने एक्सचेंजेस मतलब सारे इंडेक्सेज को रिव्यू करके और उसके बाद उनमें चेंजेस करते रहते हैं। इसकी खबर आपको समय पर मिलती रहेगी, वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस
वो रिव्यू करते रहते हैं। और जो खास करके ब्लू चिप कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, आमतौर पर वो कंपनियां बनी रहती हैं। और अगर कोई ख़ास उस कंपनी के साथ समस्याएं नहीं हैं, कहीं लॉज का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है या उनसे आगे कैपिटलाइजेशन में दूसरी कंपनियां नहीं निकल रही हैं, तब तक आमतौर पे वो बनी रहती हैं। लेकिन जैसा राजीव ने बताया, इनका रिव्यू क्वार्टरली बेसिस पे चलता रहता है और उसमें चेंजेस होते रहते हैं। अरुण अगले कॉलर होंगे।
हेलो
जी, अरुण जी पूछ लें सवाल।
यस मिस्टर अरुण, यू आर ऑनलाइन।
हेलो सर,
from Chennai, Arun, Mr. Arun from, yes, Chennai, please.
Sir, I am on query.
Yes, go on.
Gold has hit $3,400. Hello.
Yeah. Please, because go ahead.
We can hear you loud and clear, Mr. Arun. Go on.
Because of this conflict between Iran and Israel, gold has hit $3,400. How much can this go from here? Second is, I am hearing Market Mantra daily. Can you tell the gold price in English also daily?
No.
Okay.
So the first thing that he wanted to, yes, understand how much increase it may be possible in the gold prices. So that is a very speculative question, and there are people or there are institutions who are making projections of 4,000 or even higher, $4,500 prices. But no one can say this for certainty. And someday, yes, even $4,000 price will be there, even higher will be there. But at what time, no one can say.
And regarding the other query which Mr. Arun had, we do have this bullion segment in our program on a daily basis.
Yeah.
And we do provide the rates of gold and silver, of course, every day. Keep tuning into this program, Market Mantra, and you will get to know,
yes,
the prices.
Yes, and one should not think that the gold prices will keep going up only.
As it has been.
Suppose the geopolitical tension gets diffused tomorrow or day after tomorrow, you will see that the gold prices may come down very sharply also.
Right.
Yeah. Jai Kishan, हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से जुड़े हुए। जय किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ लें।
जी जी नमस्कार, मैं जयकिशन साइकिल मार्केट से ब्लाइंड हूँ। मैं
जी,
मैंने HDFC बैंक से होम लोन लिया 15 साल के लिए, 15 लाख रुपया। अब जो मेरी उन्होंने रेगुलर किस्तें बनाई, फर्ज कीजिए कि उन्होंने 18,000 रुपए पर मंथ की किस्त बनाई, रेगुलर मैं पे कर रहा हूँ, पता चला कि जो मेरा कैपिटल है वो 30% तो रहता है और बाकी 70% इंटरेस्ट में जमा कर लेते हैं। तो जबकि ये रूल तो गलत है, जब ब्याज हमारा रेगुलर चल रहा है तो हमारा हर महीने ब्याज उसमें से कम होना चाहिए कि पहले तुम 70% ब्याज में काट रहे हो, ये तो गलत है सर।
नहीं, आप अगर देखेंगे, आप एक उनका शेड्यूल अगर देखेंगे तो शुरू में ब्याज दर आपकी ज्यादा होगी,
ब्याज ज्यादा कटता है शुरू में और बाद में फिर ब्याज का हिस्सा कम हो जाता है और कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट होता जाता है।
तो आप उनसे उसको एक बोलते हैं क्या मोनेटाइजेशन शेड्यूल, या बैंक्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं पूरे जब तक का आपका टेन्योर है तब तक का आप पूरे बैंक का क्या ईएमआई का शेड्यूल है वो ले लें।
स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ईएमआई बनेगी नहीं,
बनेगी नहीं, यस ईएमआई बनेगी नहीं क्योंकि आपको हर महीने निश्चित देना पड़े, इस वजह से शुरू में ब्याज ज्यादा रहता है।
आज भी 18,000 रुपए दे रहे हैं, 15 साल बाद जब आपका अंतिम इंस्टॉलमेंट जा रहा होगा उस समय भी आप 18,000 रुपए ही दे रहे होंगे जिसकी कीमत आज के 18,000 जैसी नहीं होगी।
बिल्कुल,
तो ईएमआई रहे जिससे हर महीने आपका एक फिक्स्ड अमाउंट ही जा रहा है, इसके लिए इस तरह की कैलकुलेशन जरूरी होती है जिसमें शुरुआत में ब्याज ज्यादा जाता है और बाद में कैपिटल रिपेमेंट बढ़ता जाता है।
और अगर वो आप मंगा के बैंक से आप उसको समझ लें तो आपको वो चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा, आप बैंक वाले से पूछ भी सकते हैं, वो समझ में आ जाएगा कि पहले महीने जो आपने ब्याज दिया था वो ब्याज घटते घटते बहुत कम हो जाएगा और आपका प्रिंसिपल यानी जो मूल धन है वो बढ़ता जाएगा।
एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट हर्ष इज टू लुक आउट इफ योर रेट्स आर काइंड ऑफ फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज।
आज की तारीख में फिक्स्ड तो कहीं मिल नहीं रहा।
बिल्कुल।
एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज सतीश चंद्रा फ्रॉम दिल्ली। सतीश
सर, माय क्वेश्चन इज दिस यूटीआई मास्टर शेयर एंड मास्टर जेन मास्टर प्लस स्कीम्स 25 इयर्स अगो, आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड, द यूटीआई पीपल आर आल्सो नॉट राइटिंग टू अस व्हाट इज गोइंग ऑन, आई मीन दे शुड राइट टू द इन्वेस्टर हाउ मेनी यूनिट्स होल्ड एंड इन व्हिच स्कीम यू होल्ड। Second question is whether the units can be dematerialized. And this and another question about the shares have gone to the investor education fund. Since 1 year, they have not complying all the requirements of this investor education fund scheme. Thank you, sir.
जी, इसमें जो यूनिट्स के डीमेटेरियलाइज करने वाला जो सवाल है उस पर मैं उन्हें बता सकता हूँ कि हाँ ये पॉसिबल है, इसके लिए जहाँ भी उनका अकाउंट है उससे वो बात कर सकते हैं, उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फैसिलिटी मिल जानी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि अगर वो ग्रोपर हैं या किसी अन्य इस तरह के प्लेटफॉर्म पर हैं तो वहाँ पर उनको डीमेटेरियलाइज करने की फैसिलिटी मिल जाएगी।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडॉलीडेस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी कल साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 दशक में साइप्रस की ये पहली यात्रा होगी। निकोसिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टोडॉलीडेस के साथ वार्ता करेंगे और लिमासोल में व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करेंगे। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने और भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय संघ के साथ भारत की भागीदारी को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिलेगी। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 जून को कनाडा जाएंगे। यह दौरा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर हो रहा है। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। श्री मोदी शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। आज के लिए इतना ही क्योंकि अब वक्त नहीं है। मार्केट मंत्रा के तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया और राजीव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
Thank you, Rajiv. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic share markets witnessed declines this week. BSE Sensex and NSE both shed more than 1%. Decline witnessed in the US markets as well. S&P 500, NASDAQ both down by more than 1%. And Prime Minister Narendra Modi to embark on a 5-day tour to Cyprus, Canada and Croatia tomorrow. That's it in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
Namaskar.
Market Mantra.